अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। आप अनुवाद की पुनरावृत्ति करें। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके द्वारा उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर में कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावना मत में एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णता अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोई मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी कृष्ण का परम सत्य कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल अर्थात भौतिकता की धूली से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंतन करने की आवश्यकता है चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गृञ्जत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का यहाँ बादशाहपुर मंदिर में हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपने बीच में वरिष्ठ वृंदावन से आए भक्तों को भी देख रहा हूं, उनके चरणों में नतमस्तक को वंदना करता हूं। बहुत सुंदर यहां भगवान एक सिद्धांत दे रहे हैं कि उन लोगों को मैं किन लोगों को वो यहां श्लोक में नहीं बताया जा रहा है, वो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं। लेकिन सार है कि कुछ लोगों को भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में अज्ञान के अंधकार को मिटा देता हूं। कैसे मिटा देता हूं? तो कहते हैं ज्ञान के दीपक के द्वारा मैं उनके हृदय में अज्ञान के अंधकार को मिटा देता हूं। ये जो अज्ञानता है, माया का इतना प्रभाव, इतना अज्ञान जीव के हृदय में भरा हुआ है, इसको तुलना अगर करें तो मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है। अभी 22-23 साल पहले गुजरात के एक शहर सूरत में एक प्लेग महामारी जैसा 1994 के आसपास की बात है, एक विशाल महामारी फैली थी, प्लेग जैसी महामारी। तो इस महामारी में होता क्या है कि घंटों के हिसाब से ये महामारी फैलती है। आज सुबह 6 बजे कोई स्थिति है, 10 बजे उससे विकराल, दोपहर 2 बजे बहुत विकराल, शाम होते होते रात होते होते तो ऐसा रूप धारण कर लेती है कि हर एक दिन भारी पड़ने लगता है। तो मुझे याद है कि उन दिनों में न्यूज आया करती थी कि सूरत के लोग सूरत छोड़ करके भाग रहे हैं, सूरत के लोग निकल रहे हैं सूरत से। आसपास के शहरों में जहां जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहां पे जा रहे हैं, रिश्तेदारों को भी डर सा लग रहा है कि कहीं ये आए हैं, इनके कारण से हमारा अपना घर कहीं या हमारा शहर लोकेलिटी सब ग्रस्त ना हो जाए। क्योंकि जब महामारी फैलती है तो उसका बहुत विकराल रूप होता है। देश से बाहर जितनी भी फ्लाइट उन दिनों में गई थी, स्पेशली अगर यूरोप की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि जब तक यहां से फ्लाइट प्रॉपरली फ्यूमिगेट होकर के नहीं आएंगी, इंडिया से फ्लाइट हम नहीं रिसीव करेंगे। मतलब अच्छे तरह से फ्लाइट खाली करके पूरा प्रबंध करके पैसेंजर आ सकते हैं और सब प्रॉपरली चेक होकर के, नहीं तो इस कंट्री में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। उसका भी एक कारण था वास्तव में कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में इसी प्लेग के कारण कई लाख, 20-25 लाख लोग अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। ब्रिटेन की पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस छोटी सी पॉपुलेशन में 20-25 लाख लोग कुछ ही दिन में इस महामारी का शिकार होकर के अपनी जान से हाथ धो बैठे। उससे भी पहले यूरोप में 14वीं शताब्दी में, जिसको ब्लैक डेथ हिस्ट्री में बोलते हैं, काली मृत्यु, यूरोप 1/4 इस प्लेग की बीमारी से खाली हो गया। कुछ ही दिन में यह काम इतना तेजी से फैला कि वास्तव में शरीर बच ही नहीं पाता है। इसका उपचार मात्र एक है, कि दवा समय पर प्लेग की मिल जाए, क्योंकि तो महामारी बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है और उतनी तेजी से दवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, और इसके लिए इतना विस्तार ये बीमारी इतना उग्र रूप ले लेती है कि बचाव हो पाना बड़ा कठिन होता है। इंडिया में तो उतना नहीं नुकसान हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको संभाल लिया, लेकिन ये रूप कोई भी विकराल ले सकती थी। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जिस तरह से शरीर कभी कभी बहुत विकराल महामारी बीमारियों के द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं, और उस स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अगर गुजरात में या गुजरात के आसपास की स्टेट में ये फैल जाता है, या कोई एक कल्पना करें जैसे पहले यूरोप में हुआ था तो कितनी तेजी से फैला होगा। तो अगर इस तरह से कोई महामारी फैलती है तो वहां जो रहने वाले लोग हैं अगर उनको दवा समय पर नहीं मिले तो उनकी हालत बहुत खराब रहती है। अभी कल्पना करें अगर हम में से कोई उस तरह की सिचुएशन में आ जाए और बिना दवा के तड़प तड़प कर मरना पड़े तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो ये तो रही शरीर की बात, उसी तरह से स्थिति आत्मा की भी होती है, जीव की, लिविंग एंटिटी, सोल की भी वही स्थिति होती है। जैसे शरीर को महामारी होती है तो उसको मरना पड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, उसी तरह जब आत्मा को ये महामारी होती है, आत्मा को महामारी का क्या अर्थ हुआ, आत्मा की महामारी का अर्थ होता है कि जब माया का अर्थात जो माया के स्वरूप है काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ये जब आत्मा पर छा जाते हैं, बुरी तरह से जब आत्मा को जकड़ लेते हैं, और जिस तरह से मनुष्य महामारी होने पर अपना बचाव नहीं देख पाता है, दवा ना होने की स्थिति में, दवा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अपने आप को बचा नहीं पाता है, उसी तरह आत्मा इन माया रूपी महामारी के रहते अगर दवा नहीं मिले तो बच नहीं पाएगा। यूं तो आत्मा मरता नहीं है कभी भी मरणशील नहीं है आत्मा, लेकिन आत्मा जिस तरह का शरीर बदल बदल कर दुख पाता रहता है वही वास्तव में आत्मा की मृत्यु माना जाता है। बार बार जन्म, बार बार शरीर, बार 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 मृत्यु, बार बार रोग, बार बार बुढ़ापा, ये अनवरत सिलसिला, अंतहीन सिलसिला आत्मा के लिए शरीरों का चलता ही रहता है। तो चाहे हमें उस तरह का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं रहा हो जैसे सूरत के कुछ लोगों को हुआ या यूरोप ब्रिटेन के कुछ लोगों को हुआ, लेकिन अगर आत्मा के पक्ष में बात की जाए, जो हम वास्तविक रूप में हैं, अगर हम जीव के संदर्भ में बात करते हैं, लिविंग एंटिटी सोल के संदर्भ में बात करते हैं, तो वास्तव में जितनी बड़ी महामारी से हम ग्रस्त हैं उसकी हमें कल्पना भी नहीं है। बाहर से जो चीज दिखती है उसकी कल्पना हमारे लिए आसान होती है, लेकिन हम लोग वास्तव में कितना कितना तड़प चुके हैं, बार 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 जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, बार 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 बार, कभी एक योनि, कभी दूसरी योनि, कभी तीसरी योनि, ये अंतहीन सिलसिला जो महामारी का हम पर, इस आत्मा पर चल रहा है, ये वास्तव में दवा ना मिलने के कारण है। अगर दवा मिल जाएगी तो ये महामारी व्याप नहीं सकती है, माया व्याप नहीं सकती है। तो प्रभुपाद यहां एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जैसे महामारी के लिए दवा मिलने पर शरीर बच सकता है, उसी तरह से आत्मा पर अगर प्रॉपर दवा, सही दवा का अगर निरूपण हो जाए, सही दवा का अगर संचालन उसको मिल जाए तो आत्मा की भी रक्षा की जा सकती है। तो वो दवा क्या है वास्तव में, वो कौन सी दवा है जो हम लोगों को बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल परफेक्ट कर देगी। परफेक्ट कर देगी का मतलब क्या, हमें स्वस्थ कर देगी। हम कितने ही बड़े रोगों के बीच में रहें, कितने ही बड़े ऐसे स्थान पर, समाज में, स्थिति में रहें जहां पर महामारी का मतलब मैं आत्मा के संदर्भ में कह रहा हूं कि आत्मा कितनी ही बड़ी बुरी से बुरी परिस्थिति में फंसी रहे, लेकिन अगर दवा सुचारू रूप से चल रही है तो आत्मा की रक्षा हो जाती है। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो लगे रहते हैं तेषाम एव अनुकम पार्थम, वो तेषाम की बात करेंगे तो इससे पहले वाले श्लोक में आएगा कि सततम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि जो सतत लगे रहते हैं भजन में, लगे रहते हैं जो सतत कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं और उन्हीं पर विशेष कृपा करके। इस श्लोक को आगे 10 और 11 को मिला करके देखेंगे तो ये तेषाम शब्द सततम से ही जुड़ करके आया है। दोनों जो तेषाम शब्द है, चाहे 10 श्लोक का या 11 श्लोक का, दोनों तेषाम शब्द उस व्यक्ति के लिए, उस भक्त के लिए जो सतत लगा हुआ है, सतत प्रयास कर रहा है। किस चीज का प्रयास कर रहा है? भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में मैं उसके हृदय में बैठ करके ज्ञान का दीपक जला देता हूं, मैं उसके हृदय में बैठ करके स्थिति संभाल देता हूं। प्रभा जी यहां पर लिखते हैं कि भगवत गीता का एक उपदेश सार है। मान लीजिए अगर किसी ने भगवत गीता पूरी ना पढ़ी हो, पूरी भगवत गीता कवर टू कवर ना सुनी हो, ना समझी हो, हमें से कितने हैं जिन लोगों ने पूरी कवर टू कवर भगवत गीता पढ़ी है, समझी है, अच्छे से समझ लिया कि भगवत गीता के सिद्धांतों में क्या क्या है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो इस तरह के कई श्लोक प्रभुपाद जहां पर लिखेंगे कि ये भगवत गीता का उपदेश सार है, ये ही भगवत गीता का मर्म है, ऐसे कई श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। तो जिस श्लोक के हम आज चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यही भगवत गीता का उपदेश सार है। सारी भगवत गीता में भगवान ने जो कुछ कहा उसका अगर सार करें और सार का भी सार करें तो इन कुछ पंक्तियों में जो तात्पर्य में प्रयुक्त की गई हैं, यूज की गई हैं, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि यही भगवद गीता का उपदेश और उपदेश का सार है। प्रभा जी लिखते हैं कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल, भौतिकता की धूलि से आच्छादित हो जाता है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग से, भौतिक संसर्ग का क्या अर्थ होता है? भौतिक संसर्ग का यह अर्थ होता है कि जिस भी शरीर में जीव आता है, जैसे हम वर्तमान में मनुष्य के शरीर में हैं, तो हम सदा से ही मनुष्य के शरीर में नहीं रहे हैं। आज हमारी जो भी आयु है वो इस शरीर में से घटा दें तो उससे पहले भी हम किसी शरीर में थे और शेष हमारी जितनी आयु इस शरीर में बची है उसको जोड़ दे, उसके बाद भी हम किसी न किसी नए शरीर में जाएंगे। तो ये शरीरों का सिलसिला, भौतिक शरीरों का सिलसिला कोई एक दो चार नहीं, प्रभा जी लिखते करोड़ों जन्मों से चल रहा है। जो हम हैं वो वास्तव में सदा से ऐसे नहीं रहे। ये जो आज पशु नजर आते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस नजर आते हैं, सुअर नजर आते हैं, ये भी कभी मनुष्य रह चुके हैं, किंतु आज अपने कर्म फलों के कारण इस योनि में है। लेकिन यही नहीं रहेंगे, ये नहीं कि आज कुत्ता है तो फिर कुत्ता बनेगा, सुअर है तो फिर सुअर बनेगा, नहीं, ये आगे बढ़ेंगे, फिर ये मनुष्य जीवन में भी आ जाएंगे कभी किसी न किसी स्थिति में। तो ये जो सिलसिला है जन्म मरण का, प्रभा जी लिखते हैं कि भौतिक करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण, ये कल्मश क्या है? कल्मश है जिस शरीर में भी जीव होता है उस शरीर के अकॉर्डिंग कुछ भोग होते हैं। उस भोग को वो बहुत बहुत करना चाहता है, वो बहुत बहुत उन भोगों को लेना चाहता है। अगर हम एक बार ये मान करके देखें कि आज जो सुअर है और वो सुअर आगे नहीं रहने वाला, किसी और बड़ी योनि में जाएगा, उसके बाद और आगे आएगा, फिर कभी कुत्ते की योनि में आएगा, तो हर एक योनि का एक विशेष तरह का भोग है। अगर उस योनि में कोई जीव आता है तो उस तरह का भोग करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता है। ही इज कंपेयर्ड, उस योनि के जो भी गुण अवगुण हैं, जो भी उस योनि के लक्षण हैं, उसको बाध्य करते हैं उसी तरह का भोग करने के लिए। तो अगर सुअर मल खाता तो उसमें सुअर का कोई दोष नहीं, वो उस योनि का, उसके गुण, उस शरीर, उस जीवा, उसके सुनने की शक्ति, उसकी फिजो साइकिल, साइको नेचर कुछ ऐसी होती है कि उसको उस भोग में आनंद आता है। उसी तरह से अगर आगे की योनि में बढ़ते जाएंगे तो हर एक योनि का कुछ न कुछ विशेष गुण अवगुण होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, उस प्रभाव के अनुसार वो भोग करता चलता है, करता चलता है। कब तक करता चलता है? जब तक उस योनि का वो शरीर समाप्त नहीं हो जाता। जैसे ही वो शरीर ढह जाता है, जीव दूसरी देह में किसी अन्य योनि में स्थानांतरण कर जाता है। शरीर छोड़ते हुए थोड़ा दुख उसको जरूर होता है, क्योंकि शरीर छोड़ना सरल नहीं है, कठिन बहुत काम है, कठिनाई पड़ती है शरीर छोड़ना। लेकिन नए शरीर में आने के बाद फिर नए शरीर के जो भोग है उसको यथावत प्राप्त करता है। कब तक प्राप्त करता है? जब तक वो देह नहीं छूट जाता। फिर थोड़ा कष्ट होता है मृत्यु के समय, नई योनि में आता है, जन्म में थोड़ा कष्ट होता है, शरीर रहते हुए थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन भोग चलता रहता है उस नए योनि का। जो नया तरह का भोग है, जो नए कॉम्बिनेशंस हैं, उसके वो भोग उस तरह से चलते रहते हैं। कब तक चलते रहते हैं? जब तक वो शरीर नहीं ढह जाता है। तो कब तक ये चलता रहता है? अंतहीन चलता रहता है। ये कोई बाहर के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, हम सबकी यही स्थिति है। मैं अपने को ये कहता हूं कि मैं हजारों बार सुअर की योनि में आया हूंगा, हजारों बार कुत्ते की योनि में आया हूंगा, क्यों नहीं आया हूंगा? अगर करोड़ों जन्म है, 84 लाख, अगर करोड़ों को 84 लाख पर डिवाइड करेंगे तो एक एक योनि कितनी कितनी बार भोगनी पड़ेगी? कई कई बार। 84 लाख के कुछ आगे जाकर के 1 करोड़ बनता है, ऐसा ही होता है ना। 84 लाख में 16 लाख जोड़ते हैं तो 1 करोड़। करोड़ों माने बहुवचन की बात की जा रही है। तो कई कई बार, कई कई बार हम कई कई शरीरों से गुजर चुके हैं, और उन सब शरीरों के जो भौतिक कल्मश हैं, उसमें जो भोगने की प्रवृत्ति है, वो इस आत्मा में संस्कार के रूप में स्टॉक होती जाती है। जो भोग करने की इच्छा है वो शरीर बढ़ने से कम नहीं होती है, भोग करने से और बढ़ती जाती है। तो मन पर, चित्त पर पिछले करोड़ों जन्मों में जो हमने भोग किए हैं, जो हमारी भोग की प्रवृत्ति है, उसके संस्कार बहुत गहराए हुए हैं। ये जो चित्त है, हमारा जो मन है, ये संस्कारों से भरा हुआ है, और ये संस्कार जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक ये शरीरों का सिलसिला रुक नहीं सकता। ये नए शरीरों को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे हाथ में है एक तरह से, लेकिन ये वास्तव में संस्कार जो हमारे मन पर, हमारे चित्त पर जो भोग के, भौतिक संसार के कलमश के जो संस्कार हैं, जब तक शुद्ध नहीं होंगे। आप विश्वास मानिए, ये शरीरों का सिलसिला यथावत चलने वाला है। पुनः कोई नया शरीर मिलेगा, जन्म का दुख होगा। जब तक वो शरीर की काल है, आयु है, तब तक कुछ न कुछ दुख सुख चलते रहेंगे। फिर नए नए भोग उस शरीर के, नए नए कर्म, नए नए कर्मफल और संस्कार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो जो बाहर की महामारी में कह रहा था वो उतनी विकराल नहीं है, जो वास्तव में हमारी अपनी महामारी है जिसमें हम फंसे हुए हैं। आप विश्वास मानिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई थोड़ा भी सजग होकर के ये प्रयास करे कि मैं निकलना चाहता हूं, और उसको ये थोड़ा भी समझ में आए, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये कहेगा कि मैं अगर वास्तव में इस तरह की महामारी में फंसा हुआ हूं, तो आप बताइए कि इसका निदान क्या है, ये बाहर कैसे आऊंगा इससे। देखो, कोई भी रोग होता है और इस तरह का विकराल महामारी जैसा रोग होता है तो बिना दवा के तो ठीक हो नहीं सकता। दवा तो करनी ही पड़ती है। मैं जैसे कह रहा था कि यूरोप में जब प्लेग फैला था, जिसको ब्लैक डेथ शास्त्र में, इतिहास में कहा गया काली मृत्यु, कृष्ण मृत्यु, काली मृत्यु, काली मृत्यु, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। आदमी खड़ा खड़े खड़े गिर गया, थोड़ा सा हाथ पे पांव पे कुछ धब्बा हुआ, मर गया। इतना तेजी से आप एक चौथाई यूरोप की डेथ हो गई कुछ दिन में। आप कल्पना करें, मान लीजिए एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ना यूरोप, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, तो यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है। एक चौथाई, अभी जैसे एशिया में भारत एक कंट्री है, उसी तरह से और अन्य एशिया में कंट्री है। अगर कोई ऐसी महामारी जैसी कोई स्थिति आ जाए कि एक चौथाई एशिया कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन चली जाए, तो कितना बड़ा विकराल रूप होगा उस महामारी का। हम कल्पना नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे सामने कभी इस तरह की स्थिति आई नहीं है। लेकिन ये शरीर के संदर्भ में है, और आत्मा के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके कोटि कोटि गुना अधिक स्थिति गंभीर है, और हमारे अपने ही साथ है। कहीं बाहर ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ही अपने साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा था कि रोग इतना भयानक है तो दवा की आवश्यकता तुरंत पड़ रही है, एकदम दवा मिलनी चाहिए। सरकार जब दवा मुहैया नहीं करा पाती है तो ये रोग फैल जाता है। उसी तरह से आत्मा को भी जब तक दवा नहीं मिलती है तब तक वो भी इस रोग से जूझता रहता है, लड़ता रहता है, फंसा रहता है, बाहर नहीं आ पाता है। तो क्या है वो दवा जो इस महामारी से हमको छुड़ा सकती है? वो क्या ऐसी चीज है जो जीवों को उसके कोटि कोटि जन्मों के कलमश के संस्कारों से बाहर निकाल सकती है? अगर रोग इतना बड़ा है तो दवा बहुत कारगर चाहिए, बहुत पोटेंशियल की दवा चाहिए, नहीं तो रोग सुधरेगा नहीं। प्रभा जी लिखते हैं, करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कारण, के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वह मल तुरंत दूर हो जाता है। कृपा जी लिखते हैं कि ये भगवत गीता का सार उपदेश है। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक कलमश में फंसा हुआ है तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य हमारे साथ हैं, हमें बस उंगली भर पकड़ानी है उनको। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपनी उंगली आचार्यों को पकड़ा देता है, महाजनों को पकड़ा देता है, गुरुवर को पकड़ा देता है, वैष्णव को पकड़ा देता है, तो उसका मात्र एक बार हाथ बढ़ा देना इतना बड़ा कृपा उसकी अपने ऊपर हो जाती है कि अब बस सब पुराना खत्म हो जाएगा। ये छोटी सी बात जो प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखी, ये हम सबके लिए बहुत बहुत सुंदर सिद्धांत है। मैं इसको और आगे सब्सटेंशिएट करूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है, किंतु से मतलब क्या होता है कि जो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो सिलसिला है, भौतिक कलमश का सिलसिला है, इससे आच्छादित हो गया है उसका हृदय इसके कलमश से। किंतु का मतलब चाहे ये बहुत पुराना है, करोड़ों करोड़ों जन्मों जैसे पुराना है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल हजारों जन्मों में दूर हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, तुरंत दूर हो जाता है। तुरंत दूर का मतलब क्या होता है? तुरंत दूर हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई बहुत गहरा अंधेरा कमरा है किसी में और हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्षों से कभी उजाला नहीं हुआ, आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट कितनी देर में आएगी, प्रकाश कितनी देर में आएगा? तुरंत आएगा। तुरंत आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से इस अंधेरे हृदय में जो करोड़ों जन्मों का कलमश है, भगवान के नाम से तुरंत साफ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप विश्वास मानिए, जो नाम आपने लिए हैं इतने नामों भर से आपके हृदय के कलमश दूर हो गए हैं। तो कोई ये कहेगा कि अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया? हाँ, आप बिल्कुल शुद्ध हो गए, लेकिन उन संस्कारों को धुलने में एक प्रोसेस है, वो टाइम लेता है। कलमश दूर हो गए लेकिन संस्कारों का शोधन, वो प्रोसेस एक प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बात की बात है, एक ब्राह्मण खड़े खड़े चक्कर आए और गिर गया, तो पास ही गंगा थी, गंगा से कुछ लोग आ रहे थे स्नान करके आ रहे थे, तो ब्राह्मण के साथ जो उसका असिस्टेंट था उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे गुरुजी हैं, इनको आप थोड़ा हाथ दीजिए, उठाइए, मैं इनको घर लेकर के जाना चाहता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, आप सब शुद्ध हो तभी आप इनको हाथ लगाइए। ब्राह्मण है, बहुत पवित्र संत है, महात्मा है, इनका पाप पुण्य बहुत तरह से बढ़ता है इनको छू लेने से करने से, तो अगर आप शुद्ध हो गए, आप तो गंगा से स्नान करके आए, आप शुद्ध हो ही गए होंगे। तो पहला आदमी आया तो पहले से उसके सेवक ने, ब्राह्मण के सेवक ने, गुरु के सेवक ने कहा कि आप मानते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं तो आप कृपा करके इनको, बोले नहीं मैं तो शुद्ध नहीं हुआ, मैं शुद्ध नहीं हुआ, वो निकल गया। दूसरा आदमी आया तो उन्हें उसको रिक्वेस्ट किया फिर सेवक ने कि ये मेरे गुरुजी हैं, गिर गए हैं, इनको आप हाथ लगा दीजिए, थोड़ा मेरी सहायता कर दीजिए, इनको मैं घर लेकर के जाना चाहता हूं, लेकिन बस कंडीशन ये है कि शुद्ध व्यक्ति इनको हाथ लगाए, दूसरा हाथ ना लगाए। तो आप तो शुद्ध हो गए हैं, अब आप इन्हें हाथ लगाओ तो मैं इनको घर ले चलूं। नहीं, मैं तो शुद्ध नहीं, मैं तो कई तरह के पाप में हूं। तो कई लोग आते हैं, कई लोग निकलते जाते हैं, आते हैं निकलते जाते हैं, कोई गंगा स्नान करके आया ये नहीं मान रहा है कि मैं शुद्ध हो गया, और निकलता जाता, नहीं मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं। उधर में एक भक्त आता है वहां से गंगा स्नान करके, तो ये सेवक उनसे पूछते हैं, मेरे गुरु जी पूरी बात उनको बताते हैं कि आप मानते हो हमें शुद्ध, मैं तो गंगा में स्नान करके आऊ, लाओ कहां से, मैं बिल्कुल शुद्ध अभी उठाता हूं। तो एक विश्वास भी है कि मैं गंगा में स्नान करके आया हूं तो शुद्ध हो गया। शास्त्र कहता है कि गंगा में स्नान करने से जीव कोटि कोटि पापों से, कोटि कोटि जन्मों के पाप से शुद्ध हो जाता है। तो अगर आज मैं गंगा में मान लीजिए स्नान करके आया तो मेरे हृदय में ये भावना आनी चाहिए, नहीं तो उस गंगा के जल का अपमान है। जिसने शुद्ध किया उसने शुद्ध करने के बाद भी सामने वाला ये माने कि मैं शुद्ध नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा गंगा माँ का अपमान माना जाना चाहिए कि कैसे। अरे वो तो पावनी है, उनका नाम ही एक है पावनी, जो पावन करती है, पवित्र करती है। तो क्यों मेरे हृदय में भावना गंगा स्नान करने के बाद रहे कि मैं शुद्ध नहीं हुआ। और गंगा जिनके चरणों से निकलती है वो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण, जो स्वयं नाम रूप में इस धरा पर कलयुग में आए हैं, वो नाम लेने के बाद अगर मैं ये कहूं कि मैं शुद्ध नहीं हूं तो कितना बड़ा अपमान है उन भगवान का। नाम और नामी अभिन्न है, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हमें से कौन कौन मानता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं मैं भगवान का संग करता हूं, भगवान का नाम करता हूं मैं भगवान का संग करता हूं मैं शुद्ध हूं। अरे संस्कारों पर ही तो काम करना है ना, संस्कारों पर काम कैसे होगा। मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा तो संस्कार भी जाते रहेंगे, लेकिन मैं शुद्ध हूं। तो इस तरह की भावना अवश्य आनी चाहिए। भगवान का नाम भगवान का संग है, भगवान का नाम भगवान का दर्शन है, भगवान का नाम भगवान का सानिध्य है। उस सानिध्य के बाद हृदय में पवित्रता का अनुभव होना ही चाहिए। तो प्रभा जी यहां पर कह रहे हैं, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो वह मल तुरंत दूर हो जाता है, तुरंत दूर हो जाता है। एक हमारे जानकार डॉक्टर हैं, वो तो कई कई बार बहुत उस तरह के पेशेंट्स के बीच में रहते हैं जिनको कोढ़ है, उस तरह की उनकी स्पेशलाइजेशन है। कोढ़ी लोगों के पास जिनके शरीर से लगातार मवाद निकलता रहता है, पस निकलता रहता है, उनका इलाज करना या उनकी सेवा करना आप विश्वास मानिए सरल काम नहीं है। जो नर्स उनकी सेवा में रहती हैं वो बहुत 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 कंपैशनेट होकर के ही वो सेवा कर पाती, नहीं तो वो कर नहीं पाएंगे। और एक उस तरह का पूरा वार्ड एक स्पेशल हॉस्पिटल में जहां पर उनको नियुक्त किया गया, तो एडवाइस उनको ये थी उस समय, एक स्पेशल गोली एक मेडिसिन ये आप चूसते रहिएगा, जीवा पर अगर आप इस गोली को रखे रहेंगे तो उसका इन्फेक्शन आपको नहीं आएगा। तो नर्सिस डॉक्टर जो भी उस वार्ड में रहते हैं वो जीवा पर उस गोली को जरूर रख करके चलते हैं, या उनको स्प्रे करना पड़ता है, या तो गोली रखी या बीच बीच में उनको स्प्रे करना पड़ता है, तब डिसइन्फेक्टेंट जैसा समझ लीजिए वो रहता है। और वो गोली अगर नहीं खाए रहते तो डेफिनेटली उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह के जहां वातावरण होता है वहां पर उनको कहा जाता है कि गोली चूसते रहिए, निरंतर जीवा पर रख करके क्या करिए, गोली चूसते रहिए, जीवा सदा रस लेती रहे उस दवा का, तो आपको इन्फेक्शन नहीं व्यापेगी। क्योंकि वो उस तरह की स्थिति है जहां पर कोई भी पकड़ा जाएगा, किसी भी समय पकड़ा जाएगा, उसी तरह की स्थिति इस भौतिक जगत में आत्मा की भी है। ये काम किसी भी समय व्याप सकता है, कोई कितना भी बड़े से बड़ा हो, क्रोध किसी भी समय व्याप सकता है, लोभ ईर्ष्या किसी भी समय घर कर सकती है। ये इन्फेक्शन इतने इतने स्ट्रांग है कि गोली सदा चूसते ही रहना चाहिए। ये जो अमृत की गोली है, इसको सदा चूसते रहना चाहिए, तो ये आत्मा को ये छह विकार व्यापेंगे नहीं। कौन से गोली? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृपा जी कह रहे हैं किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल, यह करोड़ों जन्मों का मल तुरंत दूर हो जाता है। और बाद में आकर के कहते हैं यही भगवद गीता का उपदेश सार है। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदरता से सिद्धांतों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों इस दवा का इतना महत्व है, भगवान के नाम का इतना महत्व क्यों है कि सदा जीवा पर रहना चाहिए। भगवान स्वयं इस दवा को लेकर के आए हैं, भगवान स्वयं इस औषधि को लेकर के आए हैं। किस लिए लेकर के आए हैं? ताकि जीवों पर से महामारी का प्रभाव समाप्त हो जाए। एक हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो लिखते हैं कि हेने की औषधि माया नाशी बारे लागू। ये जो औषधि है, ये जो भगवान नाम रसायन है, ये माया का नाश करने के लिए, ये रोग जड़ से समाप्त करेगा। भगवान का नाम भगवान स्वयं है, भगवान बड़ी है कि माया? अगर भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है तो भगवान का नाम बड़ा है कि माया? अगर हम माया से बाहर आना चाहते हैं, हमें से कौन काम क्रोध लोमो से त्रास्त हैं, ईर्ष्या से त्रास्त हैं और बाहर आना चाहते हैं, तो इस माया के स्वरूप में इससे बाहर आने के लिए भगवान का संग करना पड़ेगा। इस माया से ऊपर जो है उसका संग करना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान का नाम भगवान स्वयं लेकर के आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और कृपा के सागर कृपा से भरे हुए हैं महाप्रभु। राधा रानी का स्वभाव कृपा का ही स्वभाव है। राधा रानी के स्वभाव को लेकर के भगवान कृष्ण जब आए तो उनका नाम होता है महाप्रभु। एक महाभागवत है, वो लिखते हैं एक गीत में, राधा कृष्ण मिले जब दो गौरा रूप अवतारी, राधा कृष्ण मिले अब दो गौरा रूप अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 श्री राधे, कीर्तन कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो कहते हैं कि महाप्रभु जब राधा और कृष्ण दोनों मिल गए हैं और युग धर्म का परिवर्तन करना है तभी आएंगे, तो महाप्रभु आ गए हैं, ये नाम ले आए हैं और औषधि हमारे सामने है। भगवान का नाम हमारे सामने, हम जितना इसका संग करना चाहते हैं आज मौका है। कब तक रहेगा कुछ पता नहीं, सोचने का बहुत समय, विचार करने का बहुत समय नहीं है, क्योंकि कब ऐसा समय आ जाएगा कि शरीर का आत्मा के साथ विच्छेद हो जाएगा हमको पता नहीं है, और लगते लगते नाम के साथ जुड़ते भी समय लग जाता है। कई बार भक्त लोग कहते नहीं, नाम तो हम बहुत बहुत लेना चाहते हैं लेकिन नाम में मन नहीं लगता है। हम इसे कौन कौन है जिनको नाम में मन नहीं लगता है कि नाम तो जप करते हैं लेकिन नाम में मन नहीं लगता है। मन भागता है, कहीं कहीं मन भागता है, मन यहां वहां 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 कहीं कहीं जाता रहता है। तो हर एक प्रॉब्लम पहले सोल्यूशन बनता है फिर प्रॉब्लम नजर आती है, ये भौतिक सृष्टि का नियम है। जब तक किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है तब तक वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो एक हमारे आचार्य कहते हैं ये तो बहुत सरल काम है, अगर मन नहीं लग रहा है तो बहुत सरल है इसको तुम मन लगाना। तो कई बात बताते हैं, मैं एक दो बता देता हूं उसमें से। वो कहते हैं एक तो भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाएंगे वो तो सब भक्त करते ही, लेकिन जब खाएंगे तब मन ही मन भगवान नाम चलता रहना चाहिए। जब भगवान का भोग ले रहे हैं, जब प्रसाद पा रहे हैं, इसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट लग जाते हैं, कुछ देर लग जाती है, तो दिन में 2-3 बार जितनी बार भी भगवान का प्रसाद पाएं, मन में भगवान का नाम या हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए। एक अभ्यास का विषय अगर बन जाए तो 15-20 दिन में, एक महीने में आदत बन जाती है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप करके देख लीजिए। कुछ दिनों के बाद ये मन का इधर उधर फिरना अपने आप कम हो जाएगा। जितना जितना ये प्रोसेस में बढ़ते जाएंगे उतना उतना प्रभाव कम आता जाएगा। हमारे आचार्य मैं प्रभुपाद जी के बारे में बिल्कुल शांति से प्रसाद पाया करते थे, तो हृदय में मैं नहीं जानता लेकिन मैं मिलान करके देख रहा हूं कि जरूर भगवान का नाम चलता रहता होगा, निरंतर भगवान का नाम खाई ते सुई ते यथा तथा। तो खाते हुए भी अंदर मन ही मन भगवान का नाम चलते रहना चाहिए, हरे ऐसे उच्चारण मन में, बाहर आवाज नहीं आ रही है, ग्रास खा रहे हैं, अंदर अंदर नाम चल रहा है। और पीते हुए भी, दिन में कितनी बार पानी पीना पड़ता है, 10-5 बार, 8 बार, 12 बार, कुछ ना कुछ तो पानी गिलास सब पीते हैं। तो जब पानी भी पिए तो पानी पीते हुए भी मन ही मन हरे कृष्ण मंत्र जपते रहे। जो खाना और पीना है ये हमारे शरीर में रस बनाता है, ये तो हम सब जानते हैं, ये सब शरीर में रस बनाते हैं। तो वो रस, एक तो भगवान का भोग प्रसाद हम पा रहे हैं उसका प्रभाव है, और दूसरा भगवान का नाम लेते हुए पा रहे हैं तो निर्गुण रस बनता है। जिस तरह का भोजन करते हैं, जिस तरह के परिवेश में भोजन करते हैं, उसी तरह का रस बनता है। भगवान का नाम सतगुणी है, रजगुणी के तमोगुणी। भगवान का नाम इन तीनों में क्या है? तीनों गुणों से परे। बहुत बिल्कुल सही उत्तर है, भगवान का नाम गुणातीत है, निर्गुण है। तो भगवान का नाम लेते लेते जब प्रसाद का रस बनेगा तो वह रस कौन सा बनेगा? निर्गुण रस बनेगा। उस निर्गुण रस का जब शरीर में प्रवाह होगा तो मन में जो चेतना जाएगी किस रस की जाएगी? इस निर्गुण रस की जाएगी। तो निर्गुण रस की जब चेतना मन में जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद भक्त इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि मन टिक रहा है, नाम में मन टिक रहा है, नाम में मन टिक रहा है। तो भगवान के नाम में अगर मन टिकने लगता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? और ज्यादा नाम करने का मन करता है। अगर नाम में मन नहीं टिक रहा है तो कितनी रह गई, कितनी हो गई, वो घटा जमा खूब चलती है। इतनी रह गई, इतनी हो गई, इतनी चल गई, इतनी रह गई, इतनी देर में हो जाएगी। जैसे किसी को मान लो अगर 5 साल की सजा मिली हो तो 2 साल की पूरी हो जाए तो भी 3 की रह गई, 5 महीने की सजा मिली 2 की पूरी हो गई। अरे सजा तो नहीं है, इस महामारी को दूर करने के लिए हम दवा ले रहे हैं, स्वयं स्वेच्छा से ले रहे हैं, कोई हमारे मुंह में ये दवा तो नहीं डाल रहा है ना, हम तो स्वेच्छा से ले रहे हैं। जब स्वेच्छा से ले रहे हैं तो प्रयास करें कि इसको करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए। नाम का प्रभाव क्या होता है? नाम का प्रभाव सारे पाप को समाप्त कर देता है, ये नाम का प्रभाव है। ये सही है कि नहीं?
सही है लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
अरे पाप को समाप्त करने के लिए भगवान का नाम थोड़ी लिया जाएगा। भगवान का नाम किस लिए लिया जाता है? भगवान का नाम लेने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मतलब क्या होता है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति ढुल ढुल प्रेम आना चाहिए। जैसे कृष्ण का हमारे प्रति करुणा और प्रेम है, उसी तरह का प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति हो, उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। कि जीव आत्मा कृष्ण के लिए बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए, हृदय में आत्मा में पूरी तरह से कृष्ण को समर्पण, प्रेम की भावना से आत्मा ओत प्रोत हो जाए, ये नाम का प्रयोजन है। अगर ये नाम का प्रयोजन है और नाम हम ले भी रहे हैं, महामारी दूर होने का अर्थ क्या है? कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो हम में से किस किस की महामारी दूर हो चुकी है? जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया वो महामारी से बाहर हो गया, वो प्लेग में, इस ब्लैक डेथ में नहीं है, इज आउट ऑफ द डिजीज। जिसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको कभी भी व्याप नहीं सकती है ना माया। माया तब तक व्याप सकती है जब तक कृष्ण प्रेम पूर्णता आश्रित होकर के, शरणागत होकर के जीव ने प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक अंत तक भी माया व्याप सकती है। शास्त्र में उदाहरण है, कई बड़े बड़े देवता कभी उदाहरण सत्य करने के लिए चाहे, जीवों को दिखाने के लिए कि देखो हमारी ये स्थिति हो सकती है, किसी की भी स्थिति कहां भी ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह से व्याप सकती है। तो जब तक पूर्णतया कृष्ण प्रेम ढुल ढुल हृदय के कोने कोने को, एक एक अंश को छान लीजिए, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, भोग की कोई वासना नहीं है, उसको स्थिति मानी जाएगी कि अब उसका रोग समाप्त हो गया। ऐसा जीव ये शरीर छोड़ करके किस शरीर में जाएगा? कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, सुअर के शरीर में, या 84 लाख में किसी योनि में, कौन से शरीर में जाएगा? कहां जाएगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव कहां जाएगा? उसका क्या नया शरीर बनने वाला है? आध्यात्मिक शरीर जो वास्तव में वो है, ये जो चमड़ी है यही महामारी है जिसको बहुत सजा करके रखना पड़ता है। ये कैंसर को सजाते हैं, प्लेग को सजाते हैं, इस महामारी को सजाते हैं, यही महामारी है। हम मन के वश में रहते हैं, यही महामारी है। इससे बाहर आने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे,
प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवद गीता का यही उपदेश सार है। क्या उपदेश सार है? कि करोड़ों जन्मों का भौतिक कल्मश तुरंत दूर हो जाएगा। कैसे? भगवान का नाम जीवा पर, रसमयी नाम सदा जीवा पर रहे। तो हमें से कौन कौन तैयार है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए? लेकिन ये प्रोसेस होता है। आज हम जहां हैं वहां से तुरंत निरंतर जप नहीं कर पाएंगे। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। परसों कौन सी तिथि है, कौन सी विशेष तिथि है परसों? एकादशी। इस एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है। क्यों माधव की तिथि कहा जाता है? क्योंकि इस तिथि पे भक्ति का जन्म हो सकता है।
हमारे हृदय में किस चीज की कमी है कि अभी शुद्ध भक्ति जन्म नहीं ली है। एकादशी के दिन संभावना होती है कि शुद्ध भक्ति हृदय में जन्म ले ले। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, वो कहते हैं कि भक्ति की जननी है। तो मां कौन है? ये तिथि मां है जिस दिन ये पुत्री जन्म लेगी। पुत्री का नाम क्या है? भक्ति। तो मां प्रसव किस दिन कर सकती है? एकादशी के दिन संभावना है कि शुद्ध भक्ति का प्रसव हो जाए, ये संभावना है। आज हम जिस भी स्थिति में हैं, एकादशी वाले दिन अगर एक माला उसमें जोड़ दे भगवान के नाम, नने कोई मान लीजिए अभी चार माला, दो माला, एक माला, सोलह माला, आठ माला, बीस माला, जितना भी जो माला, पचास माला, चौसठ माला, जितनी भी करता है, अगर उसको लगता है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, अगर उसको लगता है कि अब मेरा बस है, अब तो तुरंत मैं भगवत धाम जाने वाला हूं, तो जो मैं कह रहा हूं ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि अभी मेरे को कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है, तो इन शब्दों को ध्यान से जो प्रभुपाद जी ने कहा और जो बात मैं बता रहा हूं कि इस तिथि पर एक माला जोड़ देनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप करता है तो 17 करने में उसको कितना बड़ा प्रयास पड़ेगा, 16 5 मिनट का। तो ये जो एक माला जोड़ी, हो सकता है कि इस नए प्रयास को देख करके, क्योंकि भक्ति तो कभी भी उदय हो सकती है, थोड़े से प्रयास से भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, बहुत कम प्रयास करने से। एक माला एकादशी वाले दिन जोड़ देनी चाहिए। और अगली एकादशी कब आती है? कितने दिनों के बाद? 15 दिनों के बाद। तो जितनी माला करते हैं एक जोड़ा 15 दिन तक अभ्यास किया, तो ये जुड़ा हुआ जो अंक है ये अभ्यस्त अंक हो जाएगा ना। अभ्यस्त का मतलब जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो इसी को चलो फिर अगली एकादशी का वेट करके वहां जोड़ेंगे। अगर लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है तो उस दिन क्या करें? एक माला और जोड़ दी जाए। 16 की 17 और 17 की 18 बहुत भारी पड़ रही है तो 18 पर रुक जाइए। लेकिन अगर लगता है कि अभी कृष्ण प्रेम पाना है इस जीवन में, और कृष्ण प्रेम पाने का सबसे बड़ा प्राइस क्या है? कृष्ण प्रेम जो पाना चाहते हैं, अगर पूछा जाए कि योग्यता क्या है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, हमारे आचार्य कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पे श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए, पूर्ण दृढ़ता के साथ इस सिद्धांत का पालन करने की हृदय में इच्छा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नाम लेकर के आए और मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर बनाया बलराम जी को। कृष्ण नाम लाए, डिस्ट्रीब्यूटर बने कौन? बलराम जी, यानी नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि जिसमें श्रद्धा है, जो इस सिद्धांत पर श्रद्धा रखता है, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, वो पा जाएगा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हे श्रद्धावान जनों, जो भी श्रद्धावान है, सुनो, महाप्रभु ने मंत्र ला करके क्या कहा। मैं अपने से नहीं बांट रहा हूं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, मुझे ऊपर से आदेश हुआ, मैं तो आकर के बस बांट रहा हूं। प्रभु राराध्याय भाई मांगो ऐ भिक्षा, प्रभु राज्ञा माने महाप्रभु की आज्ञा से मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। बजो कृष्ण कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण राज संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण राज संसार करो छाड़ी अनाचार। वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का संसार करो। कृष्ण का संसार करने का मतलब क्या होता है? एक एक दृष्टि होती है जिसको कृष्ण का संसार कहा जाता है, कि जब कृष्णमय संसार नजर आने लगता है, धीरे धीरे जब कृष्णमय हो जाता है संसार, तो उसको कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो सभी धर्मों का सार क्या कह रहे हैं? एक जीवों पर दया और कृष्ण का नाम। यहां पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि भगवत गीता उपदेश सार क्या है? भगवान का नाम। तो नित्यानंद प्रभु भी वही बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी वही, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, खूब भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, और यही वास्तव में भगवान की अनुकंपा है। तेषां एव अनुकंपार्थम, किन पे? सतत युक्ता नाम, जो सतत लगे रहते हैं उन पर भगवान अनुकंपा करके क्या करते हैं? उनके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाशमय दीपक जला देते हैं, और उस दीपक के साथ वो फिर नया भौतिक शरीर नहीं पाता है, वो अपने स्वरूप में आध्यात्मिक स्वरूप में आता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय हो तो दो मिनट में तुरंत पूछ लीजिए, फिर आरती का समय होगा। जी देखो, मैं जैसा कह रहा था, दो बातें हैं। एक तो होता है कि जो हम पर पाप का वर्तमान में प्रभाव है, और एक जो पुराने संस्कारों के बीज हैं, फूट हैं, वो सब होंगे समाप्त। कुछ अभी समाप्त होंगे, कुछ धीरे धीरे प्रोसेस में लग करके समाप्त हो जाएंगे। तो तुरंत का प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ यह है कि बहुत समय नहीं लगेगा, इसी जन्म में जिस जन्म में भगवान का नाम लेना पहली बार भी शुरू किया, उसी जन्म में ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लेना चाहिए। निरंतर कैसे लिया जाए? निरंतर इस जीवा को नाम जब लेते रहेंगे तो वो निरंतर हो जाता है। अंतर के बिना को निरंतर कहते हैं। कैसे लिया जाए? तो ये एक अभ्यास का विषय है। जो निरंतर नाम वैष्णव लोग, महाभागवत लोग लेते हैं, उनकी कृपा से लिया जा सकता, उनके संग से लिया जा सकता, और सबसे बड़ी बात ये श्रद्धा, ये विश्वास कि नहीं, नाम निरंतर लिया जा सकता। नहीं तो महाप्रभु कीर्तनिया कौन सा हरि कहते हैं? तो महाप्रभु तो भगवान है, वो आदेश जैसा कह रहे हैं, या इच्छा जैसी व्यक्त कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि सदा लें, तो महाप्रभु कोई थियोरिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जिसको जितना वर्षा विश्वास श्रद्धा है, श्रीमद भागवत में चेतन चरणामृत में यह आता है कि जिसकी श्रद्धा कोमल है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, उस व्यक्ति का स्तर उसके अनुसार निश्चित होता है। अगर ये कहा जाए कि प्रथम क्लास का भक्त कौन है, या प्राकृत भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है, तो हमारे आचार्य की यार श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी कोमल श्रद्धा है, कोमल माने साफ श्रद्धा है, हो भी सकता है, लेकिन जिसकी जितनी दृढ़ श्रद्धा है वो उसका पाने का अधिकारी बन जाता है, उस श्रद्धा के माध्यम से अधिकारी बन जाता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। अगर जिसकी श्रद्धा नहीं है क्या कृष्ण प्रेम पाएगा? आदम श्रद्धा, साधु संगा भजन क्रिया नृत्य कहां से शुरू हो रहा है? पूरी प्रक्रिया श्रद्धा से। उसी तरह से सिद्धांत पर भी जिसकी श्रद्धा है वो निरंतर वाली स्थिति पर आ सकता है। श्रद्धा से हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। श्रीमद भगवद गीता यथावत की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला गोपाल की, निताय गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्ण, जैसे प्रोविजन करना भगवान के लिए तो अभिनंदन करना थी और खुश रखना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हम सभी रहते हैं। 25 जून 25 जून रविवार को 3:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रहता है सेक्रेटरियट ए कृष्ण की बात किया गया है। तो आप सभी के लिए एक निमंत्रण है, 25 जून रविवार को 3:30 बजे सेक्रेटरियट ए कृष्ण मंदिर पहुंचे, यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वागत किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ बलदेव बनाने जिनको रथ पर विराजमान करके उनके रथ को पीछते हुए लेकर स्थान तक लेकर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और बहुत सारा प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी 25 जून को अपनी कृपा की वर्षा करने के लिए गुड़गांव में सचिव एक कृष्ण मंदिर के पास आ रहे हैं। तो आप सभी को स्वागत करने के लिए आया है और इस यात्रा में पूरे उत्साह के साथ नाचते हुए गाते हुए कीर्तन करते हुए प्रसाद पाते हुए इस अवसर को लाभना है। और जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जिसे श्रद्धा की पूरी बात कर रहे थे, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम आपको तुरंत होने वाला है। और उससे भी अगर आप ज्यादा श्रद्धा चाहते हैं, ज्यादा विश्वास चाहते हैं, तो जगन्नाथ की सेवा भी करनी होगी। और सेवा करने के अवसर मिला हुआ माता जी जो भी भगवान के लिए कोई करना चाहते हैं, कोई भोग भी भगवान का तैयार करके देना चाहते हैं, तो ये सभी अवसर है, आप अपने लेकर जा सकते हैं। भगवान के लिए कुछ करिए, भोग लेंगे और 10:30 बजे कृष्णा मंदिर सेंटर कैंप के वहाँ पर एक भोग वाले हैं जो है पहुँचा दीजिए। जब आप भोग देंगे तो उस समय आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को आपको स्वीकार करना है और वो टोकन आपको भगवान का जो महाप्रसाद है वो आपको दिलाएगा। तो जिनको जिनको भी भगवान का महाप्रसाद चाहिए ये जो हानि है वो लेकर जाए और भगवान के लिए वो बनाकर इसके साथ एक पर्ची मिलेगी आपको जिसमें लिखा होगा वो कैसे तैयार किया जाता है, ऐसे क्या एक्सपायर हुए हैं जिससे जो आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो जरूर करें। और बाकी इसके अलावा भी क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ये आयोजन काफी धूमधाम से किया जा रहा है, तो तन मान धन से जिस तरह से भी आपके इस यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं तो सहयोग दे सकते हैं। बाहर धर्म प्रभु बैठे हुए हैं और भी मत हैं तो उसे आप देकर जिस तरह से भी सहयोग। और बात साथ ही इससे कोई भी इससे फिजिकल सर्विसेज की भी जरूरत है, रथ यात्रा में बहुत सारी सेवाओं की जरूरत होती है, तो अपना नाम जरूर एड्रेस दे दें ताकि जब सेवाएं एलोकेट की जाएंगी तो आपको कॉल किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सेवा क्या है। और उसके लिए पहले 22, 23 और 24 तीन दिनों के लिए श्री जगन्नाथ जी की कथा भी है और ये कथा कहा की कृष्णा मंदिर सेक्रेटरियट में है और कथा करने के लिए आ रहे हैं एक्सप्रेस मोहन दुर्गा प्रभु जो कि इस्कॉन वैली चैनल के प्रेसिडेंट है। तो जगन्नाथ जी की सेवा अच्छे भाव से कर सकते हैं इसलिए 22, 23, 24 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे और ताकि एनर्जी पूरा उत्साह हमारे पास हो ताकि 25 जून को रथयात्रा में पूरे उत्साह से भाग लें, ठीक है। बाकी अभी हम जो है आरती का समय आरती होगी और उसके बाद आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था।
Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे आप ले लेंगे व्हाट्सएप पे शेयर होगी बोलेंगे।